में दसम स्कंद के 16वें अध्याय में नाग पत्नियां भगवान काली नाग के उद्धार करने वाले श्री कृष्ण को प्रार्थनाएं कर रही हैं, उनके 36वें श्लोक का भी पाठ करने जा रहे हैं। कस्यानुभावो अस्य न देव विद्महे त्वांगरिहि रेणो स्पर्शा अधिकारः यदवांचयः श्री लननाचरत तपो विहाय कामान सुचिरं धृत्त व्रताः। नाग पत्नियां कह रही हैं कस्य अनुभावो अस्य न देव विद्महे, हम इसके सौभाग्य जो इसको फल मिला है इतना बड़ा उत्तम कि तव अंगरी रेणु आपके चरण कमलों की इसको धूल प्राप्त हुई है, रेणु प्राप्त हुआ है, और ये इसका क्या अधिकार है। यद वांच इच्छा, जिसकी इच्छा करती है श्री लक्ष्मी देवी ललनाचर्त तप, अभी तक तपस्या कर रही है वृंदावन में, विहाय कामान सारे अपना वैकुंठ का भोग छोड़ के सुचिराम धृत व्रता बहुत समय से व्रत धारण कर रही है, उसको भी प्राप्त नहीं हुई है, इसका क्या सौभाग्य है। इसका अर्थ है तब से नहीं मिलती, तब से मिलती तो लक्ष्मी को मिल जाती, तो ये तो आपकी अहितुकी कृपा है। नागपत्नियां कहती हैं हे नाथ, इस कालिया नाग का क्या सौभाग्य है कि इनके फनों के ऊपर आपके चरणों की रज का स्पर्श हुआ, आपका चरण का स्पर्श हुआ। ऐसा सौभाग्य तो लक्ष्मी देवी को नहीं प्राप्त हो रहा है जो बहुत समय से तपस्या कर रही है और सारी भोग की इच्छाएं भी त्याग के बैठी हुई है। चक्रवर्तीपाद लिखते हैं इसका अर्थ है जो कृपा कालिया के ऊपर हुई वो तपस्या की नहीं है, तपस्या की होती तो लक्ष्मी के ऊपर होनी चाहिए ना। इसका अर्थ है कि भगवान आपने अहितु की कृपा की है, कालिया का कोई योग्यता नहीं थी। ये 3 श्लोकों में कहती हैं नाग पत्नियां क्या पुण्य इसने किया था, तो बड़ा क्रूर है, पापी है, इसको इतना बड़ा अनुभव मिला, इतना बड़ा फल मिला, आपके चरणों की रज मिली, क्या फल मिला कोई पूछे तो। ऐसा फल मिला कि आपके चरणों की रज मिली जो किसी भी पुण्य और तप से नहीं मिलती है। केवल रज नहीं मिली, आपके तो चरण मिले, आपके चरण नहीं मिले, आपके चरणों के द्वारा आपने इसके मस्तक के ऊपर फणों के ऊपर नृत्य किया। एक बार आपके चरणों की रज किसी के मस्तक पे मिले उसके लिए वो लालायत रहता है, परंतु आप तो एक एक फण के ऊपर अपने चरणों का प्रहार किया और अपने चरणों का स्पर्श करके रज दिया, ये बहुत दुर्लभ है। लक्ष्मी देवी महान भक्त है, बड़े बड़े ब्रह्मा जैसे भक्त जो आप के अंग से उत्पन्न हुए हैं, नारायण के रूप में लक्ष्मी तो सदा आपके साथ रहती है, परंतु फिर भी इस गोपाल के चरण रज को प्राप्त करने के लिए बड़ी तपस्या कर रही है बेल वन में। यही बात श्री राजीव गोस्वामी लिखते हैं हम नहीं जानती हैं कालिये के सौभाग्य का क्या कारण है, ये अपराधी है, परंतु इसको आपके चरणों की रज जैसा प्रसाद मिला है। लक्ष्मी को जो तपस्या से सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ वो आपके कोमल चरण कमल और चरणों की रज इस कालिया को मिली, वो तो आपकी अपनी लक्ष्मी तो आपकी अंतरंग शक्ति है, नित्य आपके साथ निवास करती है, फिर भी उसको ये सौभाग्य नहीं मिला। उसको नहीं मिला, कालिया को मिल गया। क्या योग्यता काली की है कि आपके चरणों की रज मिली? ये बहुत बड़ा संदेह है। जो लक्ष्मी को नहीं मिली वो कालिया को कैसे मिल गई? वो तो वैकुंठ में नारायण के संग रहने वाली है, और नारायण और कृष्ण में कोई अंतर तो है नहीं। परंतु कृष्ण की लीला में वो गोपी नहीं बनी। उस समय उनको केवल भगवान के वाम भाग के ऊपर सुनहरी एक स्वर्ण रंग की लकीर बालों की गाई स्थान आपने दिया, चरणों की रज नहीं दी, वक्ष स्थल पे स्थान दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने पहले कहा है 10 स्कंद के 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में, गोप्यो अंतरेण भुजयो अपि यतस्परहा श्रीहि। भगवान आपने गोपियों को तो आलंगन किया अपने दोनों भुजाओं से, ऐसा सौभाग्य लक्ष्मी को नहीं मिला। लक्ष्मी इसके लिए लालायत है। उनको तो केवल आपके वक्ष स्थल के ऊपर श्री वत्स का चिन्ह का रूप मिला, स्वर्ण लाइन मिली एक सुनहरी बालों की। एक नारी के रूप में लक्ष्मी तो नारायण की अर्धांगिनी है ही, परंतु वह तपस्या कृष्ण को प्राप्त करने के लिए क्यों कर रही है? और बहुत तीव्र तपस्या कर रही है। वो जानती थी कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं है, ये भी जान रही है, परंतु कृष्ण की जो रस है, कृष्ण के अंदर जो रस है वो अधिक है, और उसके लिए जो लौलुप्य या लोभ उत्पन्न हुआ है वो लक्ष्मी को ऐसा करने के लिए तपस्या करा रहा है। ऐसे लक्ष्मी भी भगवान की अंतरंग शक्ति है, तो गोपियों में कोई अंतर नहीं है। एक दृष्टि से गोपियां भी भगवान से प्रेम करती है, लक्ष्मी भी प्रेम करती है, परंतु गोपियों का प्रेम अति तीव्र है। भगवान के नाना रूपों में भगवान के प्रति भक्तों का अलग अलग भाव होता है। लक्ष्मी सदा ही नारायण के संग रहती है, परंतु सीता लक्ष्मी का अलग तो है नहीं, परंतु राम के विरह में सीता विलाप कर रही है। अब कब राम से अलग कब होती है? नारायण से लक्ष्मी अलग होती नहीं है, तो सीता का वियोग कैसे राम को हो जाएगा? ये अलग लीला में अलग बात है। परंतु लक्ष्मी अपनी तपस्या से तीन युगों से तपस्या कर रही है, परंतु गोपी भाव नहीं प्राप्त कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि उसको गोपी ही बनना पड़ेगा, गोपी के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। वो लक्ष्मी को स्वीकार नहीं है, गोबर उठाना पड़ेगा गैया का, वो इससे उसको स्वीकार नहीं है। वो वैकुंठ के भाव में है, ऐश्वर्य के भाव में है, और माधुर्य के जो गोपियों का भाव है उसको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कोई कह सकता है कालिया कि पत्नियां बड़ी भक्त हैं इसलिए उसको सौभाग्य मिला है, अथवा वो वृंदावन में वास कर रहा था इसलिए उसको सौभाग्य मिला है, यमुना में रह रहा था इसलिए उसको सौभाग्य मिला है। परंतु यमुना का तो अपराधी है, उनके जलचरों को मार रहा था। ये कारण ऐसे नहीं लगते हैं कि उसको भगवान के चरणों का स्पर्श मिला हो, क्योंकि अपराधी के रूप में रह रहा था, सारे ब्रज को सताया था उसने, यमुना जी को दूषित किया था, और कोई वृंदावन में कृष्ण को पाने के लिए नहीं रहा था, गरुड़ के भय से आके रहा था। तो आखिर क्या उसका सौभाग्य है? पता नहीं। सनातन गोस्वामी भी यही बात लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण की माधुरी, प्रेम माधुरी देखकर लक्ष्मी वैकुंठ वासिनी, जिसको भगवान ने अपने वक्ष स्थल के ऊपर स्थान दिया है, वो बड़ी लोभी होकर लोलुप्य होकर तपस्या कर रही है बेल वन में कि कृष्ण के प्रति गोपी भाव को प्राप्त करें। नहीं मिला उसको। आगे कुछ लोग पढ़ रहे हैं। ननाक पृष्टम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धे अपुनर्भवम वा वांचन्ति यत पाद रजः परपनाः। क्या ऐसा बड़ा फल मिल गया कालिया को? भगवान कहते हैं, वो नाग पत्नी कहती है कि एक बार जिसको आपके चरणों की रज मिल जाए, उसको न तो ब्रह्मा का पद चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न धरती का राज चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, न मुक्ति चाहिए। इन सब को तो वो तुच्छ समझता है, वो कुछ भी नहीं है, वो तो अपने आप मिल जाती है तो भी कहता है नहीं चाहिए। जिन्होंने आपके चरणों की रज को प्राप्त किया है ना, वो कभी भी न स्वर्ग का अधिपति चाहते हैं, न पूरे इस ब्रह्मांड के ऊपर राज चाहते हैं, न ब्रह्मा का पद चाहते हैं, और न ही तो योग की सिद्धियां चाहते हैं, और न मुक्ति चाहते हैं। ये सब वो ये श्लोक कहता है कि आपके चरण की रज मिलने वाले को ऐसा संसार का कुछ भी नहीं चाहिए। चरण रज की का फल इन सबसे महान है, जो आपके चरणों का शरण लेते हैं परपन्नाहा, वो स्वर्ग और नहीं चाहते हैं, उनको स्वर्ग नहीं चाहिए, तो फिर और क्या चाहिए? चरणों की रज मिली तो सब मिल गया। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, बहुत से फल मिलते हैं, परंतु आप थोड़ा ही आपके चरण की रज का प्राप्ति हो जाए, और ब्रज में भगवान की चरण की रज एक एक कण के ऊपर भगवान के चरण का स्पर्श हुआ है, ब्रज की रज में भगवान ने अपनी कृपा को छुपा के रखा है, ये ब्रज रज प्राप्त हो जाए भाग्यशाली किसी को तो उसका जीवन धन्य हो जाए। आगे कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, तदेश नाथाप दुरापमान्यै तमो जनहि क्रोध वशो अपि अहिषः संसार चक्रे भ्रमता शरीरिणो यदिच्छतः स्याद विभवः समक्षः। तदेश नाथ अप दुरापम अन्यै। हे नाथ, ये जो कालिया है, दुरापम जो कभी नहीं, मुश्किल से मुश्किल मिलने वाली थी, जो कठिन प्राप्त करने में थी, आपके चरणों की रज अन्यै जनहि, दूसरे लोग आपकी प्रार्थना करते हैं और संसार में कुछ मांगते हैं, परंतु ऐसा कोई उसको क्या सौभाग्य मिल गया? भगवान कालिया अहिपति, इसका मतलब सांपों का राजा, तमोगुण का जन्म लिया। जन्म कहां मिला? तमोगुण में मिला, और क्रोध उसके स्वभाव में था, वो क्रोध के वशीभूत था, और उन्होंने उसको वो फल मिल गया दूसरों को वो मिलता ही नहीं है। ये जो शरीरधारी संसार में बद्ध जीव है, बहुत सी इच्छाओं के लेकर जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमण कर रहे हैं। हमने अपने आंखों से देखा है कि कालिए को ये कैसे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके चरणों की रज मिली। दूसरों के लिए बहुत दुर्लभ है, बद्ध जीव तो इच्छाओं से भरे पड़े हैं और संसार के चक्कर में भ्रमण कर रहे हैं जन्म मृत्यु के, उनको और तो बहुत सारी सभी आशीर्वाद मिल सकते हैं, परंतु हमने देखा वो सब आशीर्वादें आपके चरणों के रज के सामने तुच्छ है, कुछ भी नहीं है, और ऐसे तमोगुणी कालिया को कैसे ये मिल गया। प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं, भौतिक जगत में बद्ध जीव अपने आप को मोह माया से मुक्त कर सके ये संभव नहीं है, और अपनी चेतना को भगवान के ऊपर केंद्रित कर सके ये भी संभव नहीं है, परंतु कालिया के फनों के ऊपर भगवान ने नृत्य करके उसको जो सौभाग्य दिया वो अतुलनीय है। बद्ध जीव भगवान के चरणों के स्पर्श को अपने सर के ऊपर न भी प्राप्त कर सके, परंतु भगवान के प्रतिनिधि साधु संत गुरु के चरणों की रज को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल करके भगवत धाम जा सकते हैं। ये है प्रभुपाद जी के शिष्यों का तात्पर्य। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, आपके चरणों की रज तो अति उत्तम लाभ प्राप्त करती है, बड़ा फल देती है, परंतु भौतिकवादी वो आपके चरणों को भौतिक भोग के लिए ही प्राप्त करना चाहते हैं। जो आपके चरण लक्ष्मी के लिए प्राप्त करना दुर्लभ है, और दूसरे उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं परंतु नहीं मिला है, वो इस कालिये को मिल गया जो अज्ञानी था, क्रोधी था, और क्रोध भी आपके प्रति कर रहा था, फिर भी उसको ऐसे मिल गया। कालिया को वो मिला जो भविष्य में किसी को मिल सकता है, बहुत बड़ा भाग्यशाली कोई हो तो, परंतु बड़े बड़े महान उत्तम लोकों के अधिपति ब्रह्मा जैसों को ये मिलना संभव नहीं है। पूजा कर रहे हैं आपकी, कालिया अपराधी है, अज्ञानी है, क्रोध के वश में है, सारे सांपों का सरदार है, राजा है, आपके चरणों की रज प्राप्त कर रहे, हजारों साधनों से ये नहीं हो सकता, केवल आपकी कृपा से ये हुआ है, आपकी अहितु की कृपा है। और इसलिए नाग पत्नियां कहती हैं, हे नाथ, बड़ी दुखद प्रार्थना कर रहे हैं, जो उनके आपके चरणों का ध्यान करेगा उसको सब सिद्धियां अपने आप मिल जाएंगी, भले कोई अपने शरीर को मैं मानता हो, या भौतिक संसार के धन को चाहता हो, या आध्यात्मिक शक्तियां चाहता हो, वो सब मिल जाएगा। और कोई प्रेम आपका चाहे तो प्रेम भी मिल जाएगा, आपके चरणों का ध्यान करे तो सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए अब ये सकालिया जिसके फनों के ऊपर आपके चरणों के चिन्ह पड़े हैं, उसने विशेष प्रेम प्राप्त किया है, विभव का मतलब प्रेम प्राप्त किया है, विशेष प्रेम प्राप्त किया है। बहुत सी चीजें प्राप्त कर सकता है आपसे, कोई भौतिक धन चाहिए, आध्यात्मिक शक्तियां चाहिए, प्रेम चाहिए, पर इसको प्रेम मिला है। इसकी कुछ गहरा अर्थ ये है, अज्ञान में जन्म है, ये तो इसका स्वभाव है जन्म से ही, और इनको जन्म कौन देता है, आपके ही निर्देश से जन्म होता है भगवान, आपने ही ये व्यवस्था की है, तो इसमें इसका क्या अपराध है, आप इसको क्षमा कर दो, ये आगे चल के प्रार्थना में कहा जाएगा। आपके चरणों का कोई ध्यान करे, वो चाहे शरीर में आसक्त हो या कोई और सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, चाह रहा हो, प्राप्त कर सकता है। जीव जन्म जन्मांतर के चक्कर में भ्रमण कर रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, पाप पुण्य के कर्मों को करते हुए जन्म मृत्यु के चक्कर में भोग रहे हैं, संसार चक्र जैसे चक्कर घूमता है ऐसे घूम रहे हैं, वो अपने शरीर प्राप्त करते हैं, भौतिक शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, धन भी प्राप्त कर सकते हैं, विभव क्योंकि आपके चरणों की रज प्राप्त हो जाए तो ये सब कुछ संभव है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संसार चक्र का एक और अर्थ है मुक्ति की अवस्था, जो सार है चार पुरुषार्थ का, जन्म अर्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो सार है जो मोक्ष भी चाहते हैं अध्यात्म दृष्टि भी चाहते हैं, उनसे भी आपके चरणों की रज का प्रसाद महान है, उनको भी साक्षात आपके समक्ष उन आपका चरण नहीं मिलता है, साक्षात नहीं मिलता है। वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं परंतु आपके चरणों की रज को नहीं। इसलिए ये जो कालिया के फन है ना, इसके ऊपर आपने अपने दो चरणों से, जो कमल चरणों से नृत्य किया है चरण कमलों का, ये विशेष विभव है। अब 39 श्लोक से लेकर ये 11 श्लोक में नागपत्नियां नमस्कार करके प्रणाम करेंगी। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने। ये ऐसे श्लोक हैं जिनका पाठ करने में ही आनंद आता है, अपने आप में ये श्लोक बड़े सुंदर पाठ करने में रस देने वाले हैं। एक प्रकार का भगवान के नाना प्रकार के नाम का वर्णन कर रही हैं, और ये नाम का वर्णन कैसे कर रही हैं, हे प्रभु आप अचिंत्य ऐश्वर्य गुण संपन्न है, तुभ्यं भगवते महात्मने पुरुषाय भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने नमः। हे प्रभु आप अचिंत्य ऐश्वर्य गुण संपन्न है, सबों के शरीर में अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहते हैं, आप देश काल एवं वस्तु की सीमा से रहित महान आत्मा अनंत स्वरूप हैं, आप आकाश आदि समस्त भूतों के एकमात्र आश्रय हैं, आप सृष्टि से पहले भी सदादि रूप से विद्यमान रहते हैं, आप संपूर्ण जगत के कारण हैं और स्वयं कारण रहते हैं, ऐसे आपको हम लोग नमस्कार करती हैं। श्री स्वामी लिखते हैं अचिंत्य ऐश्वर्य गुण संपन्न आपको नमस्कार है। इस अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए नागपत्नियों ने 10 श्लोकों के द्वारा श्री भगवान की विशेषताओं को उपन्यस्त करती हैं। पुरुषाय का अर्थ है सभी शरीरों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहने वाले आपको नमस्कार है। महात्मने का अर्थ है ऐसे होने पर भी आप किसी सीमा को के अंतर्गत नहीं हैं, क्योंकि भूतवासाय क्योंकि आप आकाश आदि समस्त भूतों के मतलब पृथ्वी आकाश जलवायु सभी भूतों के एकमात्र आश्रय है। ये भी कैसे है? तो इस पर कहती हैं भूताय सभी भूतों से उनके कारण रूप से आप विद्यमान रहते हैं। अभी सभी शरीर तो आपने ही बनाए, उसी में आप विराजमान हैं, क्योंकि पराय आप संपूर्ण जगत के अभिन्न निमित्त उत्पादन कारण है, किंचन परमात्मने आप कारण रहित हैं, आपका कोई कारण नहीं है, ऐसे आपको नमस्कार है। तो ये जो श्लोक है इसके लिए प्रभुपाद जी के शिष्यों ने तो एक शब्द ही लिखा है मात्र कि आइए इस श्लोक का रस आस्वादन करें। वो कहते हैं आइए इसको गाएं और गाकर आनंद लें। नमस्तुभ्यं भगवते, भगवान आपको नमस्कार है जो षडगुण समन है, संपन्न है। पुरुषाय, जो परम पुरुष है, परमात्मा के रूप के सबके हृदय में विराजमान है। महात्मने, जो सर्वव्यापक है। भूत आवास आय, ये प्रकृति के 24 तत्व का आप आश्रय हैं। भूत आय, परंतु आप भूत के रूप में भी प्रकट होते हैं। भूत आय आफ्टर 10 मिनट्स, हरे कृष्णा, आफ्टर 10 मिनट्स यू कैन कम, नीड समथिंग, लक्ष्मी, स्वामी जी हैज, हरे कृष्णा। भूत आवासाय, भूताय, भूताय का मतलब कि प्रकृति से पहले आप अपने सच्चिदानंद रूप में थे। पराय, सबके आदि कारण है। परमात्मा ने, हे परमात्मा, आपका कोई कारण नहीं है। हम प्रणाम आपको करते हैं, हे श्री कृष्ण। परम पुरुष भगवान सबके हृदय में रहते हुए भी, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहते हैं, फिर भी आप सर्वव्यापक हैं। भले आप सारे 24 तत्वों के आश्रय हैं, फिर भी आप इनसे पहले रहते हैं। आप सबके कारण होते हुए भी इन सब भौतिक कारणों से परे हैं, क्योंकि आप परमात्मा हैं। ये संस्कृत श्लोक केवल प्रभुपाद के शिष्य कहते हैं, पढ़िए, गाइए और आनंद लीजिए। चक्रवर्तीपाद लिखते हैं, भगवान के 6 श्लोकों में अहितुक की कृपा जो कालिये के ऊपर हुई, उसका वर्णन किया नागपत्नियों ने। अब 10 श्लोकों में 11 बार, श्लोक हैं 10, 11 बार नमस्ते शब्द कहती हैं और भक्ति पूर्ण नमस्कार कर रही हैं। हम प्रणाम करती हैं जो भक्तों के लिए पूजन्य है। भगवान है, षडगुण संपन्न है, उसको प्रणाम करती हैं। हम उस पुरुष को प्रणाम करते हैं जो गोपाल के रूप में, ग्वाल बाल के रूप में है, जो मानव जैसे रूप में द्विभुज श्याम सुंदर को प्रणाम करती हैं। पुरुष का अर्थ लिखती हैं। भले मानव के रूप में ये गोप कुमार है, लेकिन ये सर्वव्यापक है। महात्मने, ये सर्वव्यापक है। हमने आंखों से देखा, अभी सारे बछड़े यही बन गया था, सारे ग्वाल बाल यही बन गया था। ये सर्वत्र है, अकेला खड़ा है यहां, बांसुरी बजा रहा है, ये सब जगह यही है। योगियों के ध्यान का विषय भी यही है, क्योंकि परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहता है ना, तो योगी भी इसी को ढूंढ रहे हैं। ये भूत भी है, इसका मतलब जीवों से अभिन्न है, क्योंकि जीव इसी के अंश हैं। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, कालिये को जो दंड दिया, उसको नागपत्नियों ने स्वीकार किया और आश्चर्य से भगवान की कृपा का वर्णन किया, और विशेष रूप से भगवान के चरणों के ऊपर अपराध किया, फिर भी भगवान के चरणों की रज को प्राप्त किया। तो ये बड़ा आश्चर्य, एक विपरीत है, अपराधी को चरणों की रज मिल जाए। ये सब भगवान के अंदर जितने भी विरोध आभास हैं, बिना पांव के चलता है, बिना आंखों के देखता है, बिना हाथों के ग्रहण करता है, ये जो वेदों में भगवान का वर्णन है ना, ये सब विपरीत जो आभास है, ये सब भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा संभव है। एक दूसरे के से जो ये बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं, कंप्लीटली कंट्राडिक्टरी हैं, विरोधाभास जो है वो भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा, अचिंत्य शक्ति का अर्थ है जो संभव नहीं है उसको संभव कराए, अघटित घटित असंभव को संभव कर दे, वो है भगवान की अचिंत्य शक्ति, वो सब कुछ कर सकती है। अब वो बहुत निम्रता पूर्वक अपने पति के लिए क्षमा याचना और अपराध से मुक्त करके उसको माफ करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए 10 श्लोकों में नमस्कार कर रही है। हे भगवान, आप अनंत शक्तियों के सागर हो, सारे विरोधाभास आप में पूर्ण हो जाते हैं, सब संभव है आप में। फिर उसकी महिमा गाती हैं। श्रीधर स्वामी ने हरेक का कार्य और कारण लिखा है, जो जो भगवान के नाम यहां लिए गए हैं उनका एक दूसरे के बिल्कुल विरोध है, परंतु वो दोनों महिमा है भगवान की, अथवा एक नाम दूसरे से ज्यादा महिमामय है, उसमें और अधिक रस है और अधिक ऐश्वर्य है। इसलिए एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी भगवान की भगवत्ता को दर्शाते हैं, और कोई नहीं कर सकता है ऐसे। संसार में भी कभी ऐसे कोई चीजें हम देखते हैं तो आश्चर्य लगता है, वो भगवान है, पुरुष है, परंतु वो सर्वव्यापक है। भाई एक व्यक्ति है एक जगह पुरुष का मतलब वो सब जगह कैसे हो सकता है? ये हो सकता है क्या? ये है भगवान है, जीवों का स्वामी है भूता, जीवों का स्वामी है भूताशाय, परंतु वो स्वयं भूत के जीव के रूप में आता है। सारे वे महत तत्व का स्वामी होते हुए ही हर एक के शरीर में वो पांच भूत बन के आ जाता है। ये पांच भूत भगवान की शक्ति है, ये मेरा हमारा शरीर तो उसी का बना हुआ है। कितना बड़ा आश्चर्य है, जीव भगवान से अभिन्न है क्योंकि भगवान का अंश है, भगवान इनके स्वामी है। और अथवा जीवों के बीच में रह रहे हैं, देखो सब भक्तों के बीच में रह के रहे, वो जन्म लेते हैं भूताय, जायति जन निवासो देवकी जन्म याद वादो, ये भागवत का श्लोक है 10:19-90 आखिरी अध्याय में 48वां श्लोक है। जयति जन्म निवासो देवकी जन्म वादो, कृष्ण सदा ही ग्वाल बालों के बीच में और जादुओं के बीच में नित्य निवास करते हैं, ये देवकी और यशोदा दोनों के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, उनकी जय हो। किसी चीज में से भी भगवान भिन्न नहीं है, सभी भगवान की शक्ति है, तो भगवान शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, परंतु फिर भी वो सब जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। हम उसको नमस्कार करते हैं, सनातन गोस्वामी लिखते हैं, जो पराय है, जो सबको अपने बस में रखते हैं, जो स्वामी है, जो ईश्वर है, और जो सबको प्रेरणा देते हैं परमात्मा ने, परमात्मा सबको प्रेरणा देते हैं, तो सबके ईश्वर सबको प्रेरणा देने वाले को नमस्कार करते हैं। भगवान की आज्ञा से सब कार्यों में लगे हैं। अपने कर्म उनके अपने हैं, परंतु प्रेरणा भगवान की है, परंतु सबको भगवान उनके कर्मों का फल देते हैं, किसी को दंड तो किसी को स्वर्ग, परंतु ये सब आश्चर्य है। अथवा पराय का अर्थ है जो सबसे अलग थलग सबके हृदय में बैठा हुआ है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उपदृष्टा है, केवल देखता रहता है, साक्षी है। कालिये को दिया हुआ दंड बड़ा आश्चर्यजनक है, कृष्ण की कृपा काली ने प्राप्त की, अपराधी होते हुए भी ये बड़ा आश्चर्य है। कृष्ण सब विरोध अभास सारे कृष्ण में आके आश्रय लेते हैं। अब काली के दोष की निवृत्ति के लिए, क्षमा याचना के लिए निम्रता पूर्वक नाग पत्नियां प्रार्थना कर रही हैं। ये 10 श्लोकों में सर्वशक्तिमान भगवान का नमस्कार के द्वारा प्रार्थना कर रही। एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्त्ये अगुणाय अविकाराय नमस्ते पराकृताय च। ज्ञान विज्ञान निधाय, ज्ञान विज्ञान का सागर हैं आप, निधि कहते हैं सागर को, ज्ञान विज्ञान के सागर हैं आप। ब्रह्मणे अनंत शक्त्ये, हे परम पुरुष, हे परम ब्रह्म, आप अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। अगुणाय, प्रकृति के गुण आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालते। अविकाराय, आप में कोई विकार नहीं आता, न आपका जन्म होता है, न आप बूढ़े होते हैं, न आपके शरीर का मृत्यु होता है। ये 6 विकार जो जीवों में होते हैं आप में नहीं होते। नमस्कार करते हैं प्राकृताय, प्रकृति का जो स्वामी है उसको नमस्कार करते हैं। श्रीधर स्वामी ने इसका अर्थ लिखा है, आप ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण है। निधाय का मतलब समुन्दर है, परिपूर्ण है, क्योंकि आप ब्रह्म हैं तथा अनंत शक्ति संपन्न हैं। आप विकारों से रहते हैं, आप प्रकृति के परवर्तक हैं अथवा अप्राकृत अनंत शक्तियों से युक्त हैं। ऐसे आपको हम लोग नमस्कार करती हैं। नाग पत्नियों ने श्री भगवान के जगत कारणत्व तथा अतीत्व का प्रतिपादन करने के लिए ये कहा है। इसका अर्थ क्या है? नाग पत्नियां भगवान को जगत का कारण कहते हैं और कारण से भी परे हैं ये कहते हैं। कारणत्व और कारण अतीत्व, कारण भी है और कारण से अतीत भी है। ज्ञान विज्ञान निधाय, ज्ञान ज्ञप्ति को कहते हैं तथा विज्ञान चित्त शक्ति को कहते हैं। ज्ञान ज्ञप्ति को कहते हैं। ज्ञप्ति क्या है? जानकारी। विज्ञान चित्त शक्ति को कहते हैं। इन दोनों से आप परिपूर्ण है। ऐसा कैसे संभव है? तो इस पर वे कहती हैं, क्योंकि आप ब्रह्म हैं और अनंत शक्ति संपन्न है, इसलिए ज्ञान और ज्ञेय के आप भंडार हैं। आप कैसे ब्रह्म हैं? तो कहती हैं, कैसे ब्रह्म, ऐसा नहीं जीव वाला ब्रह्म है, नहीं। तो इस पर कहती हैं कि प्राकृतिक गुणों से रहित निर्गुणाय तथा सभी प्रकार के होने वाले विकारों से रहित है, अविकाराय हैं। और कैसे हैं? अनंत शक्ति रूप हैं। आप प्रकृति के प्रवर्तक हैं, प्रवृत्ति को चलाने वाले हैं, अथवा अप्राकृत अनंत शक्ति संपन्न है। अयमा अर्थ इत्यादि प्रकृति गुणों के से रहित होने के कारण आप निर्विकार हैं, विकार हैं प्रकृति के गुणों के कारण। प्रकृति के गुण है ही नहीं आप में, तो आप में विकार कहां से आएगा? ज्ञान मात्र ब्रह्म होने के कारण आप कारण अतीत हैं। प्रकृति के प्रवर्तक तथा अनंत शक्ति संपन्न तथा ज्ञान निधि होने के कारण ईश्वर एवं जगत के कारण स्वरूप आपको नमस्कार है। आप ईश्वर हैं और जगत के कारण हैं, आपको नमस्कार है। प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं, परम सत आपको प्रणाम है, आप सारी दिव्य चेतना जो है उसके खजाने हैं, निधि हैं, और आप अनंत शक्तियों से संपन्न हैं, भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हैं, आप में कोई आप विकार रहित हैं, परंतु प्रकृति के प्रेरक हैं, प्रकृति को आप ही चलाते हैं। जो अपने आप को बहुत बड़े, प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं, विद्वान मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, दार्शनिक मानते हैं, बड़े तार्किक मानते हैं, उनको ध्यान पूर्वक समझना चाहिए कि परम सत्य क्या है। वो है ज्ञान का और विज्ञान का सागर। विज्ञान को इन्होंने चेतना लिखा है, वहां चित्त शक्ति थी, इसलिए ज्ञान और चित्त शक्ति का सागर है। इसलिए भगवान का शरण लेना चाहिए और ये सब तर्क वितर्क को छोड़ देना चाहिए, वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। ऐसे ऐसे तर्क वितर्क के पुस्तकों के अंदर डूबने के समुद्र में डूबने से अच्छा है कि भगवान का शरण लेना चाहिए, क्योंकि भगवान सारे विज्ञान का सिद्धि है, सारे विज्ञान की सिद्धि है भगवान, सारे ज्ञान का सार है भगवान। केवल वो जो भगवान से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जो जो जिनका मन बहुत संकीर्ण है, वो इस वास्तविक भगवान के स्वरूप के वर्णन को जो नागपत्नियां कहती हैं, इसको नहीं मानेंगे। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, इस श्लोक में ज्ञानियों का जो विषय है उसका वर्णन है। हम आप किसको प्रणाम करते हैं, ज्ञानियों का लक्ष्य है उसको प्रणाम करती हैं, जो ज्ञान का और चित्त शक्ति का, ज्ञान विज्ञान निधि, ज्ञान और चित्त शक्ति का खजाना है, सागर है, आधार है, स्रोत है। जैसे एक समुद्र सारे रत्नों का, समुद्र का एक नाम है रत्नागर, रत्नों का आगार। एक मंदिर है उसका नाम है रत्नागर महादेव मंदिर, क्योंकि समुद्र के किनारे है, तो रत्नों का आगार समुद्रा, समुद्र का नाम ही है समुद्रा। स मतलब सात, मुद्रा मतलब जिसके अंदर माणक मोती पड़े हुए हैं, हीरे पड़े हुए हैं। तो जैसे सारे हीरों का सागर होता है समुद्र, हम आपको प्रणाम करते हैं जिसकी भक्त पूजा करते हैं। ये ज्ञानियों का लक्ष्य हो गया, भक्तों का लक्ष्य है। बोला भक्तों का लक्ष्य क्या है, अनंत शक्ति संपन्न भगवान। हम उस भगवान को प्रणाम करते हैं जिसमें न विकार है न गुण है, हम उसको प्रणाम करते हैं जो अप्राकृत है, प्रकृति से परे है, जो चिन्मय है, सच्चित आनंद विग्रह है। अगर कोई भगवान में मानव वाले गुण देखे और मानव समझ के उसको त्याग दे तो वो मूर्ख कहलाएगा। हम तो सब कृष्ण को प्रेम से पूजा कर रहे हैं, परंतु कोई कहेगा ये इंसान की पूजा कर रहे हैं, ये तो मानव है, तो वो महामूर्ख है। आ आप ही ज्ञान स्वरूप हो भगवान, चित्त का मतलब ही ज्ञान होता है, और विज्ञान के सागर आप हो, आपके अंदर अंदर बाहर का कोई अंतर नहीं है, कम एक एक हो, अंदर बाहर सब आप एक हो, आप अनंत शक्तिशाली हो, आप में कोई विकार नहीं है, आप निर्गुण हो, प्रकृति के प्रेरक हो, संचालक हो। ये आपके नाम जो है, ये अद्भुत स्वरूप आपका वर्णन करते हैं, ऐसा ही आने वाले श्लोकों में वर्णन है। ज्ञान स्वरूपाय, कालाय कालनाभाय कालवयावसाक्षिणे विश्वाय तद उपदृष्टे तद कर्तरे विश्वहेतवे। इसका कल करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे कल। आज कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। सुनाइए क्या समाचार है, सब ठीक है, कुशल मंगल, कोई प्रश्न जिज्ञासा?